आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय
स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गईं। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरितः निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। सर्वान विशेषण के सहित कामान पद किन का वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामान पद शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उसका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। निरअहंकार, निर्ममः और निःस्पृहः, इन तीनों पदों की अलग अलग क्या भाव हैं? क्या ऐसा होकर विचरना क्या है? मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं, उस देहाभिमान का नाम अहंकार है।
उससे सर्वथा रहित हो जाना
यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फल स्वरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सब को वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम न चल सकेगा। इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निह स्पृह अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया है। इस प्रकार अहंकार ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना सुनना खाना पीना सोना जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार ममता और स्पृहा से रहित होकर विचरण करना है। यहाँ निह स्पृह पद का अर्थ आसक्ति रहित मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। स्पृहा आसक्ति का ही कार्य है, इसलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है। परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। कामना और स्पृहा से रहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरअहंकार कहने से क्या प्रयोजन है। यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन है, इसीलिए उसे निष्काम और निह स्पृह के साथ ही निर्मम और निरअहंकार भी बतलाया गया है। क्योंकि अधिकांश में निष्काम और निह स्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मनुष्य निष्काम निःस्पृह और निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है। और जब तक किंचित मात्र भी कामना स्पृहा ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति की ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए निष्काम और निःस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरअहंकार कहना उचित ही है।
हरि नाम हरि नाम केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा
ऐसा मानने से तो एक निरअहंकार शब्द ही काफी था। फिर निष्काम निःस्पृह और निर्मम कहने की क्यों आवश्यकता हुई। यह ठीक है कि निरअहंकार होने पर कामना स्पृहा और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? इस श्लोक से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अतः संपूर्ण कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ है।
सिंधु में अविरल नदियों के प्रवेश कर जाने पर विचलित नहीं होता इच्छाओं की प्रबल बाढ़ के आने पर वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही स्थिर हो समय बिताता है, वह नहीं कि इच्छाओं की तुष्टि को जो अतिष्ट हो जाता है।
दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 72। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अपस्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। एषा और ब्राह्मी, इन दोनों विशेषणों के सहित स्थिति है पद किस स्थिति का वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है? जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक एषा पद है। इसीलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से यहाँ तक स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी का वाचक एषा और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है। तथा उपर्युक्त प्रकार से अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त कभी मोहित नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादि काल से है, इसी के कारण वह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है, अतः फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती।
Thank you.
अंतकाल में भी इस स्थिति में स्थित होकर योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में भी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही। पर जो साधन करते करते अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार ममता आसक्ति स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। जो साधक कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाला है और उसका मन यदि किसी कारणवश मृत्यु काल में संभाव में स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी? मृत्यु काल में रहने वाला संभाव और साधक का उद्धार तत्काल ही कर देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं होता, वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
जीवन ईश्वरीय का पंथ है, मोहित न हो इसका पथिक, वह तो परम निर्ग्रंथ है। अंतिम समय भी यदि कोई परिणत हो इस परिणाम में, तो हर से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में, श्री हरि से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में।
हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे
इस प्रकार दूसरे अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक किया। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म युग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश प्रारंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक किया गया। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। तो द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और तीसरे अध्याय का आरंभ करेंगे। धन्यवाद।
यह पंथ आध्यात्मिक व जीवन ईश्वरीय का पंथ है, मोहित न हो इसका पथिक, वह तो परम निर्ग्रंथ है। परिणत हो इस परिणाम में, तो हर से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में, श्री हरि से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य।